नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जल प्रबंधन और संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से देशभर के 20 आकांक्षी जिलों और खंडों में आज से जल उत्सव का आयोजन, हनुमानगढ़ का संगरिया ब्लॉक भी शामिल। प्रदेश भर में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए सभी जिलों की जाएगी रैंकिंग, नए सिरे से मानक तैयार किए जाएंगे। राज्य में उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में संवेदनशील मतदान केंद्रों पर निर्वाचन विभाग का रहेगा विशेष फोकस। और प्रदेश में रात के तापमान में और कमी आने के साथ ही सर्दी के असर में मामूली बढ़ोतरी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। नीति आयोग जल प्रबंधन और संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आज से 15 दिन का जल उत्सव शुरू कर रहा है। ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विचार से प्रेरित है कि नदी उत्सव की तर्ज पर जल उत्सव भी मनाया जाना चाहिए। श्री मोदी ने पिछले साल दिसंबर में आयोजित तीसरे सचिव सम्मेलन में ये बात कही थी। नीति आयोग ने कहा कि जल उत्सव 20 आकांक्षी जिलों और खंडों में मनाया जा रहा है। ये आयोजन राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल और स्वच्छता विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। 20 राज्यों में चलाए जाने वाले इस अभियान में जल संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा में सामुदायिक सहभागिता पर जोर दिया जाएगा। यह अभियान जल बंधन के साथ शुरू होगा। जल बंधन अनुष्ठान में जानी मानी हस्तियां और स्थानीय नेता जल स्रोतों पर पवित्र धागा बांधेंगे। वे अपने खंडों और जिलों में जल संपदा का तथ्य पत्र भी जारी करेंगे। देश भर से चयनित आशान्वित ब्लॉक की सूची में हनुमानगढ़ का संगरिया भी शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया कि उपखंड के बोलावाली गांव में जल उत्सव आयोजित किया जा रहा है।
जल उत्सव में 6 नवंबर को जल उत्सव शपथ व शुभारंभ कार्यक्रम, 7 नवंबर को जल संपदाओं की देखभाल, 8 नवंबर को प्रत्येक ग्राम पंचायत पर जल संचय दिवस और 9 नवंबर को पंचायत समिति सभागार में जल उत्सव में अध्यापकों के योगदान पर कार्यक्रम होगा। 10 से 15 नवंबर तक जल उत्सव दौड़। जल उत्सव पर समस्त विद्यालयों में छात्रों का योगदान, पेयजल सीजर की रोकथाम का कार्यक्रम, लीकेज चिन्हीकरण कार्यक्रम, जल विभाजन प्रबंधन व वाटर शेड अंतर्गत जल संचय निधियों की सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़।
प्रदेश भर में चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए सभी जिलों की रैंकिंग की जाएगी। इसके लिए नए सिरे से मानक तैयार किए जाएंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने कल स्वास्थ्य भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिलों को विभिन्न योजनाओं और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के आधार पर निर्धारित मानकों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। प्रदर्शन औसत स्तर से नीचे होने पर संबंधित अधिकारी और कार्मिक जिम्मेदारी तय की जाएगी। श्रीमती राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना से जोड़ा जाना चाहिए। प्रमुख शासन सचिव ने आयुष्मान कार्ड वितरण के शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने और नियमित रूप से आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाने के निर्देश दिए। बैठक में मौसमी बीमारियों की भी समीक्षा की गई। चिकित्सा अधिकारियों को मौसमी बीमारियों के मामले में सतर्कता बरतने और जांच तथा उपचार की माकूल व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले आज जयपुर में शिक्षा विभाग, कौशल और उद्यमिता विभाग तथा खेल एवं युवा मामला विभाग की ओर से एजुकेशन प्री समिट आयोजित की जा रही है। इस समिट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा, उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मौजूद रहेंगे। समिट में मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और निवेश तथा डिजिटल तकनीकों के उपयोग पर चर्चा की जाएगी। इस बीच प्रदेश में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सऊदी अरब गए राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने कल विभिन्न कंपनियों से मुलाकात की। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने राइजिंग राजस्थान सऊदी अरब इन्वेस्टर मीट में भी भाग लिया। उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने निवेशकों और व्यापारिक जगत के अधिकारियों से राजस्थान में निवेश की संभावनाएं तलाशने और व्यापार के नए अवसर बनाने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में संवेदनशील मतदान केंद्रों पर निर्वाचन विभाग का विशेष फोकस रहेगा। चुनाव आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त संजय कुमार और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कल सातों विधानसभा क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। श्री महाजन ने बताया कि मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग पर निर्वाचन विभाग विशेष ध्यान रखेगा ताकि मतदान प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट का तुरंत समाधान किया जा सके। उन्होंने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 आदर्श मतदान केंद्र तैयार किए जाएंगे। इन इको फ्रेंडली मतदान केंद्रों में प्लास्टिक से बनी किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस बीच उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों ने प्रचार में और तेजी ला दी है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अपने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज खेवसर से भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम डांगा के समर्थन में पाचोड़ी, खेवसर और संखवास में जनसंपर्क कार्यक्रम में भाग लेंगे। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कल रामगढ़ से पार्टी प्रत्याशी आर्यन जुबेर के समर्थन में नसवारी गांव में जनसंपर्क किया। श्री जूली आज भी कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राज्य में विधानसभा उपचुनाव के लिए पात्र दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए चल रही होम वोटिंग के तहत दूसरे दिन 712 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। दौसा विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर शेष 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया। दौसा में आज से होम वोटिंग का पहला चरण शुरू हो रहा है। प्रदेश में रात के तापमान में धीरे धीरे कमी आ रही है, इससे सर्दी का असर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में कई शहरों का रात का पारा 17 डिग्री और इसके आसपास दर्ज किया गया। प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि सर्दी बढ़ने के साथ ही सैलानी यहाँ के मौसम का आनंद भी ले रहे हैं।
सिरोही जिले में स्थित राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में अब सर्दी का असर महसूस किया जाने लगा है। पिछले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू का न्यूनतम तापमान करीब 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। माउंट में महसूस की जा रही इस सर्दी से यहां पर घूमने आने वाले सैलानी भी आनंदित हो रहे हैं। विभिन्न स्थानों से माउंट आबू घूमने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। होटल व रेस्टोरेंट सहित अन्य व्यवसायियों के चेहरों पर भी एक खुशी देखी जा रही है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
इस बीच प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवासी परिंदे सर्दी की दस्तक के साथ ही अपने घरौंदे बना रहे हैं। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में दूर दराज से पक्षी पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन पक्षियों को देखने आने वाले पर्यटकों के लिए उद्यान में सुविधाओं को बढ़ाया गया है।
उद्यान की झीलों में आज से पर्यटकों के लिए नौकायान की सुविधा शुरू कर दी गई है। बोटिंग के माध्यम से पर्यटक पक्षियों को नजदीक से निहार सकेंगे और उनकी गतिविधियों को अपने कैमरे में कैद कर सकेंगे। उद्यान में पर्यटकों के लिए 50 सीटिंग पॉइंट झोपड़ी के आकार में बनवाए गए हैं, जहां आराम से बैठकर वह सेल्फी व पक्षियों की तस्वीर भी ले सकेंगे। इसके अलावा 3 कैंटीन की भी व्यवस्था की गई है। इन दिनों उद्यान में मंगोलिया, साइबेरियन, सेंट्रल एशिया से माइग्रेटरी पक्षी पहुंचने लगे हैं। इसके अलावा अन्य देशों से भी कई प्रजाति के पक्षी उद्यान में आएंगे। केवलादेव उद्यान में सर्दियों के सीजन में 200 से अधिक विदेशी पक्षी प्रवास के लिए आते हैं और यहां आकर वंश वृद्धि कर फरवरी के महीने में अपने वतन लौट जाते हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जल प्रबंधन और संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से देशभर के 20 आकांक्षी जिलों और खंडों में आज से जल उत्सव आयोजित किया जा रहा है। हनुमानगढ़ का संगरिया ब्लॉक भी इसमें शामिल है। प्रदेश भर में चिकित्सा सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए सभी जिलों की रैंकिंग की जाएगी। इसके लिए नए सिरे से मानक तैयार किए जाएंगे। राज्य में उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में संवेदनशील मतदान केंद्रों पर निर्वाचन विभाग का विशेष फोकस रहेगा और प्रदेश में रात के तापमान में और कमी आने के साथ ही सर्दी के असर में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।